हम में से कुछ साहिबान इस चीज में इंटरेस्टेड थे कि बड़े शाह साहब रोजे का अफ्तार वगैरह उनका रूटीन क्या था। तो जितना अरसा मैं बड़े शाह साहब के साथ मैंने गुजारा तो वो दो चार चीजें मेरे लिए हैरान कन हुई। शाह साहब बताते खुद जिस्मानी तौर पे तो बहुत ही दुबले नजर आते थे, वर्चुअली हड्डियों पर खाल मंडी हुई थी और स्ट्रक्चर कोई ज्यादा बड़ा भी नहीं था। तो उन दिनों ज्यादातर रोजे गर्मियों ही के आए, जुलाई अगस्त। तो मालूम ये हुआ कि पुराने नारकली में जिस थड़े पर ड्यूटी पे बैठते थे शाह साहब, यहाँ कुछ अरसा बाद में मैं भी बैठता रहा जाके, तो वो वहां से 2 बजे उठा करते थे गर्मियों में भी। तो उठ के पुरानी नारकली से निकल के तो माल रोड पे चलते हुए तो सीधे आर्य बाजार तक, जो कैंटोनमेंट का अगला सिरा है पैदल, उस धूप में वहां से फिर आर्य बाजार से वापस मुड़ते थे और जेल रोड पर से होते हुए पैदल संत नगर आ जाते थे। तो वो कोई अफ्तार थे आधा घंटा पौन घंटा पहले। अब रोजे के साथ और उस गर्मी में जुलाई अगस्त की पैदल अनारकली से चल के आर्य बाजार तक जाना और फिर वहां से पैदल संत नगर तक आना, यकीनन दुश्वार काम है। और फिर आके अपने हाथ से वो अफ्तार तैयार करते थे। तो अफ्तार भी हमने अजीब गरीब ही देखी अपने, उसमें 3 या 4 काशें खरबूजे की और एक प्लेट वो बनाते थे ये जो काले चने होते हैं, इसके अंदर कुछ नमक मिर्च मसाले डाल के, तो थोड़ा सा उसमें हल्की सी ग्रेवी, मतलब चाट ये समझ लीजिए, काले चनों की चाट नवा चीज होती थी कोई, वो अब ये नहीं पता था क्या हो, वो होती ऐसी चीज ही थी। और एक शरबत अपने हाथ से वो बनाया करते थे रमजान से पहले, जो बाद में खैर हजरत मुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह साहब के जिम्न में एक चीज मेरी इल्म में आई तो वो भेद खुला के वो शरबत क्या था, क्योंकि शाह साहब बताते नहीं थे कि शरबत किस चीज का है। तो हम भी वहां अफ्तार के वक्त पहुंच जाते थे, मैं तो अफ्तार हमेशा बड़े शाह साहब के साथ ही करता रहा। तो रोजा खुला तो गिन के 2 चम्मच वो खाते थे उन चनों की चाट के और आधी काश खरबूजे की, और एग्जैक्टली मयर्ड होता था वो 1/4 ऑफ ग्लास उस शरबत का, और उसके फौरन बाद 1 कप चाय। ये टोटल उनकी अफ्तार डिनर। वो एक आदमी जिसने इतना लंबा रोजा रखा है और फिर पैदल चल के इतना आया, तो ये उनकी फूड इनटेक देख के हम हैरान होते थे। उसके उनके मुकाबले पे जिस जमाने की मैं बात कर रहा हूँ तो मेरी एज मेरा ख्याल होगी कोई 35 ईयर्स के करीब होगी, बल्कि इससे भी कम थी, 32-33 ईयर्स की एज थी। तो जिसामत भी अल्लाह ताला ने अच्छी खासी दी हुई थी। तो हम तो वहां बैठे धड़ खा रहे होते थे, वो पूरी प्लेट हम ही खाली करते थे। उसके बाद तंदूर से रोटी मंगवा के वहीं हम बैठ के रोटी भी खाते थे। अलबत्ता ये है कि उसके बाद फिर शाह साहब रात गए तक चाय जरूर पीते रहते थे। तो बाद में पता लगा कि वो जो शरबत था वो एक दिन भेद यूं खुल गया कि मुझे प्यास ज्यादा लगी हुई थी, तो मैंने पूरा ग्लास शरबत का पिया, तो प्यास बहुत थी। तो मैंने शाह साहब से कहा कि एक ग्लास और पी लूं मैं, कहने लगे नहीं पी तो तुम 10 लो, उसमें तो कोई नहीं, लेकिन ये ठंडा बहुत है, अगर दूसरा ग्लास तुमने पिया तो तुम्हें शदीद किस्म की कॉन्स्टिपेशन कर देगा ये। तो मैंने कहा पता नहीं क्या चीज है, मजे का होता था। तो تو بعد میں پتہ لگا کہ حضرت مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی بھی جو افطار کا روٹین تھا وہ یہی تھا, وہ اتنی ہی کوانٹٹی میں وہ کھاتے تھے, اور وہ بھی شربت اپنے ہاتھ سے بناتے تھے, اور شربت ہوتا تھا اناپ کا, وہ بعد میں بھید کھلا حضرت مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے ذمہ میں, لیکن وہ تھا واقعی بہت اچھا. میرا چونکہ مسئلہ یہ رہتا ہے کہ جو ذکر اذکار ہیں تو ان کی وجہ سے مجھے گرمی زیادہ محسوس ہوتی ہے, اسی طرح میں گرم چیزیں کھا نہیں سکتا زیادہ, میرے لیے مشکل ہو جاتی کہ, لیکن وہ جو شربت پیتا تھا اس سے ایسا بیلنس قائم تھا میرا. تو یہ ہم نے بڑے شاہ صاحب کا یہ دیکھا, اسی طرح ان کی نیند ہم نے عجیب و غریب دیکھی کہ بارہ ایسا ہوا کہ میں رات کو اگر ٹور سے واپس آیا کبھی ایک بجے دو بجے, ٹورنگ دورے چلتے رہتے تھے پورے پاکستان کے میرے, تو بائی روڈ جاتا تھا تو پھر ایسے ہی آتا تھا, کبھی ایک بجے آ گیا, کبھی دو بجے, کبھی تین بجے. تو یہ روٹین میرا رہا کہ دفتر جانے سے پہلے بھی شاہ صاحب میں مل کے جاتا تھا, آفس سے واپسی پہ بھی سیدھا انہی کے پاس. تو اسی طرح جب ٹورز پہ جاتا تھا تو واپسی پہ اگر اکیلا گیا تو واپسی پہ سیدھا شاہ صاحب کے پاس آتا تھا, تو دیکھا کہ سوئے ہوئے ہیں دیوار کی طرف منہ کر کے, بہت دبے پاؤں جا کے دیکھ کے جھری میں سے سوئے ہوئے ہیں, تو خاموشی سے واپس لوٹ گیا تو سڈنلی پیچھے سے آواز, ہر مرتبہ آواز آ جاتی تھی کہ سرفراز کدھر جا رہا ہوں صاحب, میں تو سمجھا آپ سو رہے ہیں, کہ نہیں آؤ تم آؤ. تو ان کی نیند ہم نے بڑی عجیب دیکھی, تو وہ میرے ساتھ ٹورز پہ جانے لگ گئے, تو ان کی وجہ سے ڈرائیور کو میں نہیں لیتا تھا کہ تیسرا آدمی درمیان میں ہوگا ہماری گفتگو, وہ پھر تھوڑا سا آدمی ریزرو رہتا. تو اب بارہ ایسا ہوا کہ لاہور سے میں چلا نان سٹاپ بغیر رکے اپ ٹو پشاور یا اپ ٹو بنو چلا گیا. تو چلیے میں تو گاڑی چلا رہا ہوں اس لیے سونے کا سوال نہیں ہوئی, لیکن شاہ صاحب کو اونتے نہیں دیکھا گاڑی میں کبھی میں نے. تو یہ بعد میں انکشاف ہوا کہ اصل میں یہ چیزیں, یہ قوتیں خود بخود پیدا ہوتی ہیں ذکر الہی کے جواب میں. وہ جس پر اس وقت ہم حیران ہوتے تھے, تو اندازہ یہ ہوا کہ اس میں کسی انسان کا اپنا کمال بالکل نہیں ہوتا, یہ برکت ہے اس کلام الہی کی جس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے. اسی طرح ہر ذکر الہی جو کثرت سے کیا جائے گا تو اس کے دو دور کہلاتے ہیں, ایک دور صغیر ہوتا ہے اور ایک دور کبیر. تو جب یہ دور مکمل ہوتا ہے کسی پڑھائی کا تو اس کے جواب میں انعامات انسان کو ملتے ہیں. وہ انعامات اسی طرح کے ہوتے ہیں کہ یہ انسان کی یہ قوتیں بیدار ہو جاتی ہیں یا بڑھ جاتی ہیں. تو کہا یہ جاتا ہے کہ فقیر کی تمام قوتیں اور حصے 6 گنا زیادہ بڑھ جاتی ہیں, اس کے اندر جو ٹالرنس لیول ہے وہ بھی 6 گنا ہو جاتا ہے. روایت ہے لوگ سینہ بسینہ جو چلی آ رہی ہے. اسی طرح انسان کے جسم میں خوشبو پیدا ہوتی ہے. ہم بڑے شاہ صاحب کے پاس جاتے تھے تو ان کے حجرے میں عجیب خوشبو پھیلی ہوتی تھی, ایک جو کھانا اپنے ہاتھ سے وہ بناتے تھے اس کے اندر بھی ایک عجیب سی آپ کو, اور ایک اروما اس کا آپ کو ملے گا ایک عجیب سا. تو وہ بعد میں آہستہ آہستہ سمجھ آئی بات کہ وہ اصل میں انسان کے جسم میں خوشبو ذکر الہی کے انعام کے طور پر پیدا ہوتی ہے, وہ پاکیزگی, اور اسی طرح اس کے ہاتھ میں وہ تاثیر آتی ہے. پھر ہم نے ایک وہ بھی دیکھا کہ اگرچہ کشف و کرامات کے ذکر اور اظہار سے انتہائی شدید نفرت تھی بڑے شاہ صاحب کو, وہ میں نے قصہ آپ کو شاید پہلے بھی سنایا تھا کہ उनके हुजरे में बैठा था तो वो मुझे, मैं तुर्की से शायद वापस आया था टूर पर, सरकारी काम से तुर्की गया तो वापस आया तो बड़े शाह से मिलने चला गया तुर्क। तो ऑब्वियसली मैं चूंकि तुर्की से वापस उसे पहुंचा था एयरपोर्ट से सीधा शाह के पास गया तो तुर्की का जिक्र छिड़ा। तो मैंने बताया कि मैं कहां कहां तुर्की में गया। ऑब्वियसली सरकारी काम की तो डिटेल नहीं दी जा सकती थी तो उनसे जिक्र कर दिया के। तो वो जवाब में मुझे कहने लगे कि तुर्की में जिंदगी में दो बार गया हूं, तो मेरी ड्यूटी वहां लगी थी। तो एक बार जब वहां जलजला आया है, बड़े पैमाने पर तबाही फैली, और दूसरी बार वहां एक कोई आग लगी थी, तो उसमें कहने लगे मैं गया था और फलां फलां जगह था और ये इलाके थे। वो जिक्र उसका कर रहे थे, वो जो जिक्र चला तो मैं खासा उस जिक्र में उनकी वो बातों में टोटली एनग्रॉस था। तो मुझे एहसास नहीं रहा कि मैं क्या कर रहा हूं। तो वहां बड़े शाह साहब के हुजरे में मेरी जगह एक मखसूस थी, इतना बड़ा कमरा था जितना ये सोफा है लंबाई में और चौड़ाई में, इससे डबल कर लीजिए। तो इस कोने में शाह साहब बैठते थे और उस कोने में मैं, वो जगह मखसूस थी मेरी। तो वहीं वो मेरी बैक पर भी एक दीवार के अंदर उन्होंने अलमारी सी बनाई हुई थी, और राइट साइड पर भी जहां मैं बैठता था वहां अलमारी सी थी, उसमें चीजें पड़ी रहती थी बड़े शाह साहब की। तो वहीं एक कील गाड़ा हुआ था उन्होंने दीवार में, उस पर उनकी तस्वीरें मुख्तलिफ साइज की लटकी हुई थी। कोई एक तस्वीर मेरे ख्याल 10,000 दाने की भी थी उसमें, जिसके बल दे दे के उन्होंने लटकाई थी। तो कहीं बेख्याली में उनकी एक तस्वीर मैंने उठा ली और उससे खेलने लग गया यूं हाथों में। तो बड़े मजे से शाह बयान कर रहे थे कि जब तुर्की गए तो क्या हुआ, और उसमें तो सडनली उनकी नजर मेरे हाथों पर कहीं पड़ गई, उसमें तस्वीर थी। कहां तो इतने प्यार से मोहब्बत से जिक्र हो रहा था, कहां बेपना किस्म का गुस्सा आ गया। तो मुझे कहने लगे बात सुनो, ये तुम अल्लाह का जिक्र इसलिए करते हो कि लोग तुम्हें नेक समझें और लोग तुम्हें नेक समझ के सलाम करते रहें, तुम्हारी इज्जत करें। तो मैं हैरान हुआ कि जिक्र तो तुर्की का चल रहा था, ये मेरी शामत कहां से आ गई। तो मैंने कहा क्या हुआ, ये जो तुम भरी महफिल में तस्बीह लेके बैठते हो ताकि लोग तुम्हारे हाथ में तस्बीह देखें और लोगों को ये पता चले कि तुम अल्लाह की बड़ी इबादत करते हो, बड़े नेक आदमी हो, तुम्हें सलाम करें, तुम्हारी इज्जत करें। मैंने रियलाइज किया कि मेरे हाथ में तस्बीह है। मैंने कहा नहीं, ये तो मेरी नहीं है, आप ही की तस्बीह है। तो मैं आपकी बातों में कुछ खोया हुआ था तो बेख्याली में आप ये तस्बीह उठा ली मैंने। तो मैं तो इस ऐसी खेल रहा था कि नहीं तुम झूठ बोलते हो, खेल नहीं रहे थे तुम, पढ़ रहे थे। मैंने कहा हुजूर मैं तो ये तस्बीह चला ही नहीं सकता क्योंकि मेरी उंगलियां वो इतनी लोहारों वाली मोटी उंगलियां हैं, ये तस्बीह के दाने कहां आएंगे, मैं तो दूसरी टिक टिक इस्तेमाल करता हूं। कह नहीं तुम्हारी नियत यही है, वो तो जिद में आए हुए कि तुम्हारी नियत ये है कि तुम नेक समझे जाओ और लोग तुम्हारी इज्जत करें। बड़ी मुश्किल से माफिया मांग के जान छुड़ाई। वो इस दर्जे के पाबंद थे इन बातों में कि किसी तरह जुबान से कोई कशफो करामात की बात ना निकल जाए। तो कशफो करामात का इजहार तो बड़ी दूर की बात है, लेकिन उनकी करामात बहुत सी थी। एक तो वो मैं जिक्र आसमानी बिजली का किया था, जो हम सफर कर रहे थे संजवाल से जीटी रोड की तरफ शाम के वक्त, तो वो बादल आ गए, बरसात का मौसम था तो बिजली चमकने लग गई। तो सडनली मैंने देखा कि वो गाड़ी के बॉनेट पर बिजली है। तो मैंने बड़े शाह साहब से कहा, मैंने कहा हुजूर ये देखी आसमानी बिजली बॉनेट पे डांस कर रही है। तो कहने लगे अच्छा तुमने अब देखी है, मैं तो यूं नहीं बोल रहा था कि तुम डरोगे, तो बड़ी देर से तुम्हारी छत पर डांस कर रही थी। तो मैंने कहा नहीं डर क्या हो तुम, बहरहाल तो कहने लगे देखिए देखो अभी इसको हटा देते हैं। अब ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा भी तजर्बा भी किया, फिर दाया हाथ बढ़ा के कहने लगे कि चल जा भाई यहां से। तो अगले ही लम्हे जो दूर पहाड़ नजर आ रहे थे तो उन पहाड़ों पर बिजली चमकने लग गई। एक ये उनकी हमने मैंने खुद ज़ाती तौर पर जो करामत देखी। दूसरा काम मैंने ये देखा कि नाइट्रिक एसिड जो तेजाबों में मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा स्ट्रांग तेजाब माना जाता, उससे उन्होंने एक खरल मंगवाई थी मेरे जरिए से, सिमाग एक पत्थर होता वो जहां से दरिया पहाड़ी इलाकों से निकलते हैं इनका मंबा होता है दरिया का, तो वहां से टूट फूट पहाड़ होती रहती है तो एक बड़ा टुकड़ा पत्थर गिरते रहते हैं पत्थर। तो कुछ पत्थर ऐसे हैं जो पानी के बहाव के साथ रोल होते हुए उस पहाड़ी इलाके में, क्योंकि वहां बहाव तेज होता है पानी का तो वो उस बहाव के साथ लौटते हुए नीचे मैदानी इलाकों तक आ जाते हैं। तो जहां कहीं वो दरिया में गिरता है और लुढ़कना शुरू करता है वो बहुत बड़े साइज का पत्थर होता, लेकिन बाय द टाइम वो प्लेन्स में आए और आके वहां रुक जाए वो लुढ़कने की वजह से घिस घिस के बड़ा छोटा रह जाता है। लेकिन उसकी ऐसी सीजनिंग हो जाती है कि उस पत्थर को काटना तराशना और तोड़ना बहुत ही दुश्वार होता है। उसमें चिजल्स जो हैं एक छोटे से पत्थर को शेप देते हुए 7-8 चिजल्स टूट जाती हैं भास्कर, हालांकि चीजल बड़ी हार्ड स्टील की जिसको HSS कहते हैं हाई स्पीड स्टील उसकी चीजल बनी होती है, लेकिन उसके बावजूद वो क्योंकि उसकी जो हार्डनेस है पत्थर की वो 8 हो जाती है, जबकि दुनिया की हार्डेस्ट चीज जो है वो हीरा है उसकी हार्डनेस 10 होती है, तो ये 8 हार्डनेस पर होता पत्थर। तो उसके उन्हें वो खरल चाहिए थी, मुझसे उन्होंने कहा कि तुम उन इलाकों में जाते रहते हो टूर पे तो एक खरल बनवा के ला दो। तो मैंने एक साहब ने मुझे तो वो असली वाली दे दी तो ले के बड़े खुश हुए। तो मुझसे बातें कर रहे थे तो बातें करते करते उन्होंने नाइट्रिक एसिड निकाला, स्टेनलेस स्टील की वो कटोरी सी रखी हुई थी उन्होंने, उसमें डाल के तो उसे कपड़ा उठाया और हाथों से पकड़े नंगे हाथों से उसके अंदर डुबोया। मैं बोलने लगा था कि एसिड है, उन्होंने डाल भी दिया उसमें हाथ और बड़े मजे से बैठ के वो पत्थर को साफ करते रहे। वो कपड़ा जलता था उसमें धुआं निकलता रहता था लेकिन उंगलियां नहीं उनकी जली कोई, तो नंगे हाथों से उस तेजाब से उन्होंने पत्थर को साफ किया। ये सुनाने का मतलब ये नहीं कि शाह साहब कोई माफ़ाकुल फितरत किस्म की या महावराय फितरत सलाहियतें रखते थे, उन्हें कोई माफ़ाकुल बश चीज साबित करना मकसद नहीं है। इससे कहने का मकसद ये था जिधर जो चीज मैं अर्ज करना चाह रहा था कि ये कुवतें दर हकीकत इनाम है अल्लाह का। जो आदमी अल्लाह की राह पे चलता है और अपना आप उसके लिए वक्फ कर देता है तो अल्लाह इनाम के तौर पे ये कुवतें अता फरमाता है। लेकिन ये एक पहलू है। दूसरा पहलू फकीर की जिंदगी का, ये याद रखिए कि जिस कमरे में वो रह रहे थे उसका साइज एग्जैक्टली इस कमरे के इस सोफे के बराबर था और चौड़ाई उससे दुगनी थी। अब यही उनका बेडरूम था, यही ड्राइंग रूम था, यही टीवी लाउंज था, यही किचन था, यही स्टोर रूम था उनका। अब इसी के अंदर जिंदगी पूरी उनकी, बावजूद इसके के माली लिहाज से कुछ ज्यादा एफ्लुएंट नहीं थे लेकिन इतने पर्टिकुलर थे अपने बिल पे करने के, कभी ओवरड्यू होते नहीं देखा उनके बिलों को। यह जिंदगी का एक पहलू नोट किया जाना चाहिए था कि दुनियावी तौर पर कानून की असूल की पाबंदी किस शिद्दत से बादशाह साहब करते रहे। इसी तरह मैंने जिंदगी में उन्हें, हालांकि मेरे साथ उनके तीन रिश्ते थे, पहले एक बार डिक्लेयर कर दिया कि मैंने अपनी जेब सरफराज को दे दी, तो एक वो रिश्ता कायम हुआ मेरा। फिर एक दिन लोगों के दरमियान बैठे हुए कहने लगे कि ये मेरा बेटा है। और तीसरी जो चीज उन्होंने फरमाई वो ये थी कि मेरे मुर्शिद का भी एक ही खलीफा था, मेरा भी एक ही खलीफा वो ये है, खिलाफत अदा कर दी। अब ये इतने तीन गहरे रिश्ते होने के बावजूद मैं अपनी मर्जी से जो भी उनके साथ सलूक करता रहा वो एक अलहदा इशू था, लेकिन कभी उन्होंने इशारतन भी इजहार नहीं किया अपनी किसी माली जरूरत का मेरे सामने, माली तंगी का या किसी दुनियावी मुश्किल का। मैंने उनको अगर मेरे सामने नहीं किया तो दूसरे, तो फिर बड़ी दूर की बात है, जहां मेरे साथ रिश्ता इतना मजबूत था उनका, तो वो जो कुछ दुनियावी सख्तियां आती थी तो उसको जिस तरह खामोशी से सहते थे। फिर मामूलात थे उनके कि 27th रमजान को खत्म जरूर दिलाते थे, और सारी उम्र मैंने देखा कि एक देग बिरयानी की और जर्दे की एक देग पकाते थे। तो उनकी माली तंगी या माली जराए की जो कमी थी उससे कभी नागा नहीं आया उस खत्म में, उस पर पाबंदी से अमल करते रहे। इसे 7 मुहर्रम का खत्म दिलाते थे, उसमें सिर्फ वो बिरयानी पकवाते थे, तो वो एक देख पका करती थी, सारी उम्र मैंने वही पकती देखी वहां। तो अल्लाह की राह पे चलने के लिए बुनियादी शर्त जो है वो सब्र और शुक्र की है, जिससे हम थोड़े से दूर चले जाते हैं। तो आप चूंकि सब लोग अल्लाह की कुर्बत चाहते हैं कि आप लोगों को अल्लाह अपने मुकर्रबीन में शामिल कर ले, ख्वाहिश है आपकी, तो यूं मैं हमेशा जब भी आपसे मेरी यह मौका मिलता बात करने का, तो एक चीज पर मैं, बल्कि दो चीजों पर जोर अक्सर बेशतर मैं देता हूं। एक तो सब्र और शुक्र से काम ले लीजिए, लेकिन इन दोनों अल्फाज के मफहूम हम गलत समझते हैं। हमारे यहां यह है कि मैं हाय-हाय भी करता रहूंगा, लोगों से कहता भी रहूंगा कि मैं लुट गया, मैं मर गया, रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है मेरे पास, और उसके बावजूद दिल में ये समझूंगा कि मैं सब्र कर रहा हूं। ये सब्र नहीं है, मैं बर्दाश्त कर रहा हूं। सब्र उस सूरत में होगा कि खुद मेरे इंतहाई करीबी लोगों को, वालदा, वाइफ, बच्चे, किसी को ये पता ना चलने पाए कि मैं किस मुश्किल से गुजर रहा हूं, न चेहरे से इजहार हो न मेरे किसी अमल से जाहिर हो, और हर वक्त हंसता हुआ दिखाई दूं, वो सब्र है। मैं बड़ी खुश दिली से उस मुश्किल से गुजर जाऊं, ये सब्र वो है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी लोटा फेरने वाले की तलाश में रहूं कि मैं जाके पूछूं कि भाई कोई वजीफा बता दो कि इस मुश्किल से गुजर जाऊं, फिर दावा ये हो कि सब्र कर रहा हूं। इसी तरह ये जो शुक्र का एक कंसेप्ट हमने सीखा, न जाने वो कहां से आया है, कि हम पीर साहिबान के पास, आमिल हजरात के पास, दुआ करने वालों के पास दौड़े दौड़े चले जाएंगे, मुश्किल के लिए कोई वजीफा दे दो, दुआ कर दो इस मुश्किल से निकल जाऊंगा, मेरे हालात ठीक नहीं है, और जनाब मेरा भाई मुझे मेरी जायदाद में से हिस्सा नहीं दे रहा है, उस पर मुकदमा कर दूं, दुआ करें मैं मुकदमा जीत जाऊं। लेकिन आप, हम अगर किसी से भी बात करें तो साहब शुक्र तो मैं उठते बैठते अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, वो जो हम बैठे हुए किसी महफिल में या अल्लाह तेरा शुक्र है वो कह देते हैं, उसको हम शुक्र गिनने लगते हैं, ऐसा नहीं है। जुबान से बेशक मत कहिए आप, अगर आपने अल्लाह की तरफ से आने वाली हर चीज को और उसकी उसके हर फैसले को आपने हंसी खुशी कबूल कर लिया और ये कहा कि नहीं मेरे रब ने बड़ा अच्छा किया है मेरे लिए, तो समझ लीजिए कि ये शुक्र अदा कर दिया आपने, यही शुक्र है। हम अगर अपने आप को ट्रेन कर लें एक बात पे कि हमारे रब की तरफ से जैसी जिंदगी भी अता हो गई है हमें, उसको बड़ी खुशी से कबूल कर लें हम, लेकिन हाथ पांव तोड़ के नहीं बैठे, जद्दोजहद करते रहें बगैर जुबान पर शिकायत लाए, और उस जद्दोजहद के जवाब में जो फैसला रब की तरफ से हो जाए, जो इनाम आ जाए, उसको हम बड़ी खंदा पेशानी से हंसते हुए कबूल कर लें दिल से, ये कह के कि हमारे रब ने जो अता किया बेहतरीन अता किया है, क्योंकि वो बेहतर जानता है कि हमें क्या, हमारे लिए क्या बेहतर और क्या बुरा। तो समझ लीजिए कि हमने शुक्र उसका अदा कर दिया। तो सब्र और शुक्र एक पहलू है, और जो कुछ अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाया है, खा वो कम है या ज्यादा, उसमें से उसके बंदों की खिदमत अगर हम करते रहें और इंतहाई आजजी और खामोशी के साथ कि किसी के इल्म में ना आने पाए, तो ये भी शुक्रगुजारी का एक पहलू है। तो एक तरफ तो हम इस पे अमल कर लें और दूसरी तरफ हम उसे याद करते रहें, उसका जिक्र करते रहें, तो यकीन मानिए कि कोई मुश्किल नहीं कि अल्लाह ताला हम पर भी वही अनायात न कर दे जो बड़े शाह साहब के जिक्र में बाद में कि जमन में आपसे जिक्र करता रहा हूं। तो भाइयों, जोर आप वजाइफ पर मत दीजिए, जोर दीजिए खल्क खुदा के साथ आप अपनी बेहतर डीलिंग्स पर, जो बहुत ही मुशफ़िकाना डीलिंग्स होती हैं, उस पर जोर दीजिए और अल्लाह को याद करते रहिए सब्र और शुक्र के साथ। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपको अपने करीब कर लेगा।